अध्याय तीन, तुलनात्मक राजनीति, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेज। दृष्टिकोण क्या होता है? जॉर्ज सिम्पसन लिखते हैं कि दृष्टिकोण में वे मापदंड होते हैं जिनको कुछ समस्याओं या आंकड़ों की जांच पड़ताल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वीवी डाइक लिखते हैं, एक दृष्टिकोण में चुनाव करने के मापदंड होते हैं जिनका प्रयोग अध्ययन करने के लिए समस्याओं या प्रश्नों को चुनने के लिए किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण का अध्ययन हम दो भागों में कर सकते हैं। पहला, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए परंपरागत दृष्टिकोण। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण 1945 के समय से पहले लोकप्रिय था और इसके पश्चात आधुनिक दृष्टिकोण अब बहुत लोकप्रिय हो चुका है। हम यह भी कह सकते हैं कि अब आधुनिक दृष्टिकोण ही बहुत अधिक विद्वानों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, परंतु तुलनात्मक राजनीति के विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि परंपरागत और आधुनिक दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। परंपरागत दृष्टिकोण एक विशाल नाम है जिसके अधीन तुलनात्मक अध्ययन के वे सभी दृष्टिकोण आते हैं जो आदर्शात्मक मूल्यांकन, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थागत और विचाराधात्मक आधारों पर राजनीतिक अध्ययन की वकालत करते हैं। वसवी के अनुसार परंपरागत लेवल उन सभी दृष्टिकोणों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि व्यवहारवादी या वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं आते और जो कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद युग में नहीं पैदा हुए हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं, हम परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं की पहचान कर सकते हैं। पहला, इस दृष्टिकोण में राज्य और सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य वर्णन करना है, आंकड़ों को एकत्रित और विश्लेषित करके सिद्धांत निर्माण करने को कम ही महत्व दिया जाता है। तीसरा, 1945 तक परंपरागत दृष्टिकोण ने सभी यूरोपीय या पश्चिमी संविधानों और राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक अध्ययन पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था। चौथा, केवल औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है, गैर राजनीतिक और अतिरिक्त संवैधानिक तत्वों के विश्लेषण पर कम ही ध्यान दिया जाता है। पांचवा, परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्यों और आदर्श व्यवस्थाओं की प्रकृति और महत्व के संबंध में ही अध्ययन किया जाता है। छठा, तुलनात्मक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य सबसे उत्तम राजनीतिक संस्थाओं का अनुसंधान करना होता है। आठवां, राजनीति के अध्ययन में दर्शन शास्त्र, इतिहास और कानून की अधिक से अधिक सहायता ली जाती है। दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के शीर्षक अधीन चार प्रमुख दृष्टिकोण आते हैं। पहला, दार्शनिक दृष्टिकोण। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तीसरा, कानूनी दृष्टिकोण। चौथा, संस्थागत दृष्टिकोण। पहला, दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीतिक अध्ययन में सबसे प्राचीन दृष्टिकोण है। इसको नीतिशास्त्र दृष्टिकोण या मूल्यांकन दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। इसमें राज्य का अध्ययन राज्य के दर्शन के रूप में किया जाता है। इस दृष्टिकोण के केंद्र में ऐसे प्रश्न आते हैं, राज्य की प्रकृति, राज्य के उद्देश्य, व्यक्ति और राज्य में आदर्श संबंध आदि। ऐसे प्रश्नों के उत्तर इस दृष्टिकोण में सैद्धांतिक, तार्किक और नीति शास्त्रीय के रूप में दिए जाते हैं। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य होता है एक ऐसा सच्चा और सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करना जिसके प्रयोग के लिए के द्वारा राजनीतिक संस्थाओं में सुधार किया जा सके। महान राजनीतिक चिंतकों, सुकरात और प्लेटो से लेकर अब तक के चिंतकों ने सदैव राजनीति के अध्ययन के लिए दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाया है। वर्तमान समय में लियो स्ट्रॉस और एरिक वेजालिन इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक रहे हैं। ये सभी राजनीतिक चिंतन मूल्यों संबंधी प्रश्नों पर विचार करते रहे हैं और इनका उद्देश्य रहा सर्वोत्तम या आदर्श राज्य की रचना करनी। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक वस्तुओं के सच्चे स्वभाव के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक वस्तुओं के सच्चे स्वभाव के ज्ञान के साथ साथ एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था बनाने का भी प्रयत्न किया जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण यह मानता है कि राजनीति का अध्ययन राजनीतिक दर्शन के रूप में ही किया जा सकता है और ऐसा ही होना चाहिए। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य राज्य और आदर्श राजनीतिक संस्थाओं का दर्शन बनाना और व्यवहार में आदर्श राज्य और आदर्श राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता को सामने लाना। दार्शनिक दृष्टिकोण एक शुद्ध सैद्धांतिक कल्पनावादी मूलयुक्त दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य आदर्श राज्य और आदर्श राजनीतिक संस्थाओं पर चर्चा करना। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी राजनीतिक अध्ययन का एक बहुत प्राचीन दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन को राज्य सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास का अध्ययन मानने की वकालत करता है। यह समुचित रूप में यह कुछ चरणों में भूतकाल के अध्ययन की वकालत करता है क्योंकि यह दृष्टिकोण इस बात को मानता है कि वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल का अध्ययन आवश्यक है और ऐसे अध्ययन के पश्चात ही भविष्य के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण यह मानता है कि वर्तमान समय में विद्यमान राजनीतिक की संस्थाओं की प्रकृति कार्यों और भूमिकाओं का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन संस्थाओं की क्रियाओं राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक संस्थाओं का निर्धारित करती रहें। इतिहास के अध्ययन से भी हमें ऐसी सामाजिक आर्थिक और परिस्थितियों और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण राजनीतिक अध्ययन में एक लोकप्रिय दृष्टिकोण रहा है। पहले आधुनिक राजनीतिक वैचारिक माकियावेली ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रयोग के द्वारा अपने राजनीतिक विचारों को प्रस्तुत भी किया और उनको उचित भी ठहराया। वर्तमान में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य समर्थक जॉर्ज एच सेवाइन रहा है। उसको इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधि प्रचारक माना जाता है। सेवाइन का यह दृढ़ विचार रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत सदैव एक विशेष स्थिति के कारण ही रचित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सेवाइन राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ साथ दार्शनिक दृष्टिकोण को जोड़ने का प्रयास करता है। उसके ऐसे प्रयासों का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर एस पी वर्मा लिखते हैं, महान राजनीतिक वैचारिक सदैव राजनीतिक और सामाजिक संकटों से जुड़े कर इनका विश्लेषण करते हैं। उनके विचार इन संकटों का उत्पाद तो नहीं होते, परंतु इन संकटों के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं के रूप में ही उनके विचारों की रचना हुई होती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत के समक्ष के लिए उन स्थिति स्थानों और समय को समझा जाए जिसमें ये सिद्धांत पैदा हुए होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय की राजनीतिक में आवश्यक रूप में भाग तो नहीं लेता, पर वह सदैव इससे प्रभावित होता है। तीसरा, कानूनी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण इस बात की वकालत करता है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की कानूनी शक्तियों, कार्यों और स्थितियों का अध्ययन किया जाए, क्योंकि सरकारें सदैव कानून के द्वारा स्थापित होती हैं और वे सदैव कानूनों को बनाती हैं, लागू करती हैं और झगड़ों का निर्णय करती हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि राजनीति शास्त्र में कानून और कानूनी मुद्दों का अध्ययन किया जाए। कानूनी दृष्टिकोण के केंद्रीय विचार का विश्लेषण करते हुए बॉसवी कहता है, सरकार की सीमाएं और कार्यक्षेत्र कानून के द्वारा निर्धारित होता है। हम इस सिद्धांत पर बल देते हैं, कानूनों की सरकार न कि व्यक्तियों की सरकार। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक डी टिक्विल ने एक अमरीकी झुकाव का वर्णन किया है जिसके अधीन सभी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को कानूनी रूप दिया जाए। कानूनी दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए डॉक्टर जेसी जौहरी ने लिखा है कि इस दृष्टिकोण का प्रारंभिक सिद्धांत यह है कि कानून ही उस क्रिया की प्रकृति और क्षेत्र का निर्धारण करता है जो कि एक स्थिति में की जानी चाहिए। इस प्रकार कानूनी दृष्टिकोण संस्थागत दृष्टिकोण, जिस प्रकार की इस दृष्टिकोण के नाम से ही पता लगता है कि संस्थागत दृष्टिकोण सरकार की औपचारिक संस्थाओं या संरचनाओं अर्थात विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश करता है और इसको राजनीति और सरकार के अध्ययन का सबसे अच्छा साधन मानता है। वॉसविक के अनुसार इस दृष्टिकोण में ध्यान का क्षेत्र संविधानों और अन्य उन प्रमुख दस्तावेजों पर केंद्रित होता है जिन पर सरकार आधारित होती हैं, जिनके आधार पर विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करती हैं। प्रत्येक राजनीतिक संस्था की स्थापना कानून के अनुसार होती है और यह कानून के द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करके अपना कार्य करती है। अरस्तु से लेकर सारतोरी तक संस्थागत दृष्टिकोण बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। वास्तव में कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण एक बहुत ही लोकप्रिय दृष्टिकोण रहा है। वॉस्पी ने ठीक ही कहा है, इस दृष्टिकोण की जड़ें अरस्तु तक फैली हुई हैं जिसने अपने समय के यूनानी नगर राज्यों के संविधानों के वर्गीकरण और वर्णन के लिए इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया। दार्शनिक दृष्टिकोण के पश्चात सबसे अधिक लोकप्रिय दृष्टिकोण कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण ही रहा है। आज भी राजनीतिक अध्ययन में यह दृष्टिकोण कई एक देशों में बहुत अधिक लोकप्रिय है और परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह दृष्टिकोण लगभग उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण, तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन और इसकी तुलना परंपरागत दृष्टिकोण से कीजिए। परंपरागत दृष्टिकोण की त्रुटियों के कारण 20वीं शताब्दी में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र, प्रकृति और अध्ययन ढंगों के विरुद्ध एक गहरे असंतोष ने जन्म लिया। परंपरागत दृष्टिकोण एक पक्षीय, औपचारिक और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण था जो कि न तो व्यापक तुलनात्मक अध्ययन करने के योग्य था और न ही वास्तविकता और अस्पष्टता के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता था। व्यवहार में परंपरागत दृष्टिकोण कई कुछ करने में असफल रहा। यह जर्मनी और कई और देशों में लोकतंत्र की असफलता की व्याख्या करने में असफल रहा। जब कुछ राज्यों जैसे जर्मनी और इटली में नाजीवाद और फासीवाद का जन्म हुआ तो ऐसी राजनीतिक गतिविधि की व्याख्या करने में भी यह दृष्टिकोण असफल रहा। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति की सभी प्रक्रियाओं के व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन और तुलना की वकालत करता है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान राजनीतिक प्रक्रियाओं की समानताओं असमानताओं और नियमितताओं का व्यवस्थित विश्लेषण करके राजनीति के सभी पहलुओं की व्याख्या की जाए और एक वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण किया जाए। इस दृष्टिकोण में सभी औपचारिक और अनौपचारिक राजनीतिक संरचनाओं के वास्तविक व्यवहारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु होता है सभी राजनीतिक संरचनाओं के वास्तविक व्यवहार का विश्लेषण। ऐसे विश्लेषण के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि उस सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक वातावरण का भी अध्ययन किया जाए जिसमें राजनीतिक संरचनाएं कार्य करती है, जिनसे वे प्रभावित होती हैं और जिनको वे प्रभावित करती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण कई एक नवीन धारणाओं का प्रयोग करके राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और तुलना करता है। ऐसी कुछ नवीन धारणाएं हैं राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, संरचनाएं एवं कार्य शक्ति, प्रभाव, सत्ता, उचितता, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास इत्यादि। आधुनिक दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि राजनीतिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि दूसरे सामाजिक विज्ञानों, विशेषतः मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र की सहायता की जाए। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन ढंग को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब तक हमारे अध्ययन का ढंग वैज्ञानिक नहीं होगा तब तक राजनीति के विज्ञान का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक ढंग को अपनाए जाने की भी वकालत करता है, जिसके अधीन यह आवश्यक होता है कि राजनीतिक व्यवहार के आंकड़ों को एकत्रित किया जाए, उनका वर्गीकरण किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए, उनका परीक्षण किया जाए, सिद्धांत को सिद्ध किया जाए और फिर परीक्षित और सिद्ध किए गए राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाया जाए जिनके आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण संभव हो। राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक राजनीतिक अध्ययन बनाना आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण का एक केंद्रीय उद्देश्य है। समीक्षा अर्थात निष्कर्ष। वास्तव में राजनीति के कुछ क्षेत्र एक दृष्टिकोण के द्वारा अच्छी तरह अध्ययन किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र कुछ अन्य दृष्टिकोणों द्वारा। राजनीतिक जीवन की विकट प्रकृति यह आवश्यक बना देती है कि हम अध्ययन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रयोग करें। इसके बारे में कोई दृढ़ नियम नहीं हो सकता है कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन सा दृष्टिकोण निश्चित रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात का निर्णय तो अध्ययनकर्ता ने ही करना होता है कि उसने किस दृष्टिकोण के आधार पर अपना अध्ययन करना है। जिस प्रकार एक मोटर मैकेनिक को कोई एक चाबी की आवश्यकता नहीं होती बल्कि चाबियों के एक समूह की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राजनीतिक अध्ययन के लिए केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं हो सकता। कई एक दृष्टिकोणों को अपना कर ही राजनीति के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। राजनीति के समकालीन अध्ययनों में परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के दृष्टिकोण प्रयोग किए जा रहे हैं, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आधुनिक दृष्टिकोण अब अधिक लोकप्रिय और प्रचलित दृष्टिकोण हो गया है।